मुझे आरू की बहुत फिक्र हो रही थी और तुम्हारे दोस्त पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, और वही गुस्सा तुम पर उतर गया। आई एम सॉरी। रेहान ने उसकी बाहों को अपनी गर्दन पर से हटा दिया, फिर उसके बाह पकड़कर उसे अपने साथ लगी चेयर पर बिठा लिया। रश्मि असमंजस भरी निगाहों से उसे देखने लगी। रेहान ने उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों में थाम लिया और संजीदगी से बोला, तुम सिर्फ भाभी के लिए परेशान हो, और मुझे भाभी के साथ साथ शान और उनके रिश्ते की भी चिंता सता रही है। सबको यह दिख रहा है कि शान भाभी के साथ गलत कर रहा है, उन्हें हर्ट कर रहा है, पर उनसे ज्यादा वो खुद को तकलीफ दे रहा है। उसने अतीत में इतना दर्द सहा है जिसकी कल्पना भी मैं या तुम नहीं कर सकते, और इस वक्त वो नफरत की आग में झुलस रहा था, और उनके साथ साथ उस आग में उसकी और भाभी की खुशियां और उनका रिश्ता भी जलने जा रहा था। उसकी सिचुएशन को अभी कोई नहीं समझ सकता। मैं उसके तरफ से कोई सफाई नहीं दे रहा, बल्कि ये बता रहा हूं कि इस वक्त वो अपने होश में नहीं है। जानता हूं कि जो उसने किया वो गलत था। उसके साथ गलत हुआ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो किसी और मासूम को उसकी सजा दे, और मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि जल्दी ही वो मेरी बात समझ जाए और भाभी को इस दुश्मनी से दूर रखे। वैसे रेहान, ठाकुर परिवार से तुम्हारे पागल दोस्त की दुश्मनी क्या है? रश्मि ने अपने दिमाग में चलते सवाल को रेहान से पूछ ही लिया। उसके सवाल पर रेहान खामोश रह गया और अपनी हथेलियों को उसकी हथेलियों से पीछे खींचते हुए बोला, सॉरी, पर मैं इस बारे में तुम्हें तब तक कुछ नहीं बता सकता जब तक शान की इजाजत नहीं मिलती, और वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा। रेहान की बात सुनकर रश्मि ने चिंता भरे स्वर में कहा, मैंने अपने लिए नहीं आरू के लिए पूछा था। अगर उसे सच पता चल जाता तो उसके लिए मिस्टर साइको को हैंडल करना आसान हो जाता। तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। प्लीज इस बारे में कोई बात मत करो, वरना मैं यहां से चला जाऊंगा, रेहान ने उसे चेताया, जिसे सुनकर रश्मि ने मुंह लटकाते हुए कहा, ठीक है, नहीं पूछती तुमसे कुछ भी, चलो लंच करो, फिर वापस काम पर भी लौटना है। लंच का नाम सुनते ही रेहान के भाव बिगड़ गए। उसने भौंसे कोड़कर उसे घूरते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए लंच लाई ही नहीं, फिर अब मुझे लंच करने क्यों कह रही हो? रश्मि ने उसकी बात सुनी तो मुंह बनाते हुए बोली, वो तो मैंने गुस्से में यूं ही कह दिया था, मेरी माँ अपने होने वाले दामाद के लिए लंच ना भेजे ये तो हो ही नहीं सकता। एक पल को वो मुझे भूल सकती है, पर तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। रेहान ने उसकी बात सुनी तो उसके लबों पर मुस्कान ठहर गई। उसने खाना अपनी तरफ किया और खाते हुए कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मेरे मदर इन लॉ हैं ही इतनी स्वीट, कितना ध्यान रखती हैं अपने दामाद का। रश्मि उसकी बात सुनकर चिढ़ उठी और खाना अपनी तरफ खींचते हुए बोली, ज्यादा अकड़ने और खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरी माँ है, और तुम्हारा ध्यान रखती है क्योंकि तुम्हारा रिश्ता उनकी बेटी से जुड़ा है, वरना वो तुम्हें पूछती भी नहीं। कुछ भी कहो, पर मुझे तो और आरू के हाथों का बना टेस्टी खाना खाने को मिल जाता है, मैं तो इसी से खुश हूं, रेहान ने निवाला मुंह में डालते हुए बेफिक्री से जवाब दिया और मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर रश्मि उसे घूरने लगी, बस थोड़े दिन और ऐश कर लो बेटा, उसके बाद मैं छुट्टी पर चली जाऊंगा, फिर खाना यहाँ का बेस्वाद खाना। रश्मि की बात सुनते ही रेहान का खाना सरक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। रश्मि ने तुरंत ही पानी का ग्लास उसके लबों से लगा दिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। कुछ पल बाद वो नॉर्मल हुआ और रश्मि की तरफ मुड़ते हुए हैरानी से बोली, तुम कुछ दिन बाद छुट्टी पर जा रही हो का क्या मतलब हुआ? रेहान का सवाल सुनकर रश्मि ने पहले तो आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा, फिर तुनकते हुए बोली, छुट्टी पर जा रही हूं मतलब छुट्टी पर जा रही हूं, और क्या मतलब होता है इसका? रश्मि एक बार फिर भौंच गाये उसे घूरने लगी। रेहान के परेशान निगाहों से उसे देखते हुए कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम छुट्टी क्यों लोगी, और तुमने पहले तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, अचानक छुट्टी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमारी शादी के दिन पास आ रहे हैं तो इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, और इसमें बताने वाला क्या है? ये तो ऑब्वियस है कि शादी के दिन तक तो मैं यहाँ नहीं आती रहूंगी, तो छुट्टी लूंगी ही, और जब लूंगी तो बता भी दूंगी। रश्मि की बात सुनकर पहले तो रेहान का चेहरा उतर गया, फिर वो ये सोचकर मुस्कुरा उठा कि इन दूरियों के बाद दोनों एक ऐसे रिश्ते में बन जाएंगे कि उनके बीच कोई दूरी कभी नहीं आएगी। यूं ही उनकी प्यार भरी नोकझोंक के बीच उन्होंने लंच किया और वहां से चले गए। एक बार फिर वो अपने अपने काम में लग गए, पर इस बार रश्मि उसे इग्नोर नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ आरवी सारी रास्ते अपनी जिंदगी की उलझनों में उलझी रही। अचानक ही उसके कानों में एक बार फिर उसी ड्राइवर की आवाज पड़ी, मैडम हम पहुंच गए। आरवी चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई और आवाज की दिशा में सर घुमा कर देखा तो ड्राइवर उसके तरफ का दरवाजा खोले सर झुकाए खड़ा था। आरवी ने अपना पर्स उठाया और गाड़ी से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने सामने की तरफ निगाहें उठाकर देखा वो एकदम से चौंक गई। ये उसका घर तो नहीं था, ये विला और ये जगह दोनों ही उसके लिए एकदम अनजान थे। आरवी की हैरानी भरी निगाहें हर तरफ घूम गई, उसको कुछ भी जाना पहचाना सा ना लगा। खुद को किसी अनजान जगह देखकर वो कुछ घबरा भी गई, पर उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया और ड्राइवर की तरफ मुड़ते हुए सवाल किया, ये आप मुझे कहां लेकर आए हैं? मैं इस जगह को नहीं जानती। ड्राइवर ने उसके सवाल पर सर झुकाकर ही कहा, मैडम, सर ने आपको यहीं लाने को कहा है। अब जाकर आरवी के दिमाग में उसकी बात खटकी। शान उसके लिए गाड़ी भेजकर उसे इस अनजान जगह क्यों बुलाएगा, जबकि वो तो उससे ठीक से बात तक नहीं करता और दो दिन से तो दोनों मिले भी नहीं है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने एक बार फिर ड्राइवर से सवाल किया, आपके सर कौन है? हम हैं। अचानक ही एक रौबदार आवाज आरवी के कानों में पड़ी। उसने सर घुमाकर आवाज की दिशा में देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने अमरजीत ठाकुर खड़े थे। आरवी अचंभित सी उन्हें देखते हुए बोली, आप यहां क्या? आरवी कहते कहते अचानक ही चुप हो गई। सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगी और सब उलझी कड़ियों को सुलझाने के बाद वो जिस नतीजे पर पहुंची उसके बारे में सोचते हुए उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तो ये गाड़ी आपने भेजी थी, ये बंगला आपका है और आपने मुझे धोखे से यहां बुलाया है। आरवी बेहद गुस्से में थी। वहीं अमरजी एकदम शांत नजर आ रहे थे। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे पर मन में अनेकों जज्बातों का सैलाब उठा हुआ था। आखिर आज उनकी बेटी उनके सामने जो थी और उनके बीच यहां कोई तीसरा नहीं था। आरवी की बातों सुनकर उन्होंने बेहद शांत स्वर में कहा, ये सच है कि हमने आपको यहां बुलवाया है, पर धोखे से नहीं। हम अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, बस इसीलिए हमने आपको यहां बुलवाया है। और ये हमारा ही नहीं, आपका भी घर है, तो अंदर चलिए, कुछ बातें करनी है हमें आपसे। उनकी बात खत्म होते ही आरवी ने गुस्से से कहा, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही ये घर मेरा है। आपने धोखे से मुझे यहां बुलाया है। बेहतर होगा कि आप मुझे वापस वहां पहुंचवा दें जहां से मुझे लाए हैं, क्योंकि अगर मिस्टर मल्होत्रा को इस बात की खबर हो गई कि आपने धोखे से मुझे यहां बुलाया है तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। और मैं नहीं चाहती कि वो आपके साथ कोई बदतमीजी करे, क्योंकि आप बड़े हैं मुझसे।